ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग पाठ करेंगे श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंध के 15वें अध्याय का 13 नंबर का श्लोक। श्रीमद् भागवतम स्कंध 5 अध्याय 15 श्लोक 13। राजा प्रियव्रत के वंशजों का यश वर्णन। यत् प्रीणनात् बरहिषि देव तिर्यक् मनुष्य वीरुत तृणम् आविरिञ्चात् प्रियेत सद्यः सह ह विश्वजीवः प्रीतः स्वयं प्रीति अगात गयस्य यत् प्रीणनात् बर्हिषि देव तिर्यं यत् प्रीणनात् बर्हिषि देव तिर्यं मनुष्य वीरो तृणमाविरिञ्चात् प्रियेत सद्यः सह विश्वजीवः प्रीतः स्वयं प्रीतिमगात् गयस्य यत् प्रीणनात्। श्री भगवान के प्रसन्न होने से बर्हिषि यज्ञ क्षेत्र में देव तिर्यक् देवता तथा निम्न पशु मनुष्य मानव समाज वीरुत पादप तथा वृक्ष तृणम घास आविरिंचात ब्रह्मा जी तक प्रियेत संतुष्ट हो जाता है सद्यः तुरंत सह श्री भगवान ह निश्चय ही विश्वजीव समस्त संसार के जीवात्माओं का पालन करने वाला प्रीत यद्यपि सहज तुष्ट हैं स्वयं साक्षात प्रीति संतोष के अगात प्राप्त हुआ गयस्य महाराज गय के अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। जब परमेश्वर किसी व्यक्ति के कर्म से प्रसन्न होते हैं तो ब्रह्मा से लेकर समस्त देवता मनुष्य पशु पक्षी लताएं तृण तथा अन्य समस्त जीवात्माएं स्वतः प्रसन्न हो जाती हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सबों के परमात्मा हैं और वे स्वभाव से परम प्रसन्न रहते हैं। तो भी महाराज गए के यज्ञ क्षेत्र में आए और उन्होंने कहा मैं पूर्णतया प्रसन्न हूँ। तात्पर्य यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि केवल श्री भगवान को प्रसन्न कर लेने पर देवता तथा अन्य समस्त जीवात्माएं बिना किसी भेदभाव के प्रसन्न हो जाती हैं। वृक्ष के जड़ों में सींचने से सभी शाखाएं, पत्तियां तथा फूल हरे भरे हो जाते हैं। यद्यपि भगवान आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु महाराज गाय के आचरण से परम प्रसन्न होकर वे उनके यज्ञ क्षेत्र में स्वयं आए और उन्होंने कहा, मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ। भला महाराज गाय की समता कौन कर सकता है? जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। पंचम स्कंध महाराज प्रियव्रत के चरित से प्रारंभ हुआ। बहुत सुंदर वर्णन चल रहा था, इसी क्रम में भवाटवी का वर्णन हुआ। भवाटवी का वर्णन हॉस्पिटल में इंजेक्शन जैसा कड़ा लग रहा था कि न अभी राजर्षि भरत के वंश का आगे वर्णन किया जा रहा है। प्रियव्रत महाराज के वंश का आगे भी वर्णन किया जा रहा है। वर्णन आप लोग सुन चुके हैं, महाराज गाय की महिमा का वर्णन किया जा रहा है। प्रियव्रत महाराज के वंश में गाय महाराज जन्म हुआ। वे बहुत महान व्यक्ति थे। गाय महाराज के विषय में कहा जा रहा है कि गय नृपह का प्रत्याति कर्म भी यज्वाभिमानी बहुविध धर्म गोप्ता। कह रहे हैं कि कौन ऐसा राजा है जो महाराज गाय का मुकाबला कर सकता है कर्म भी? इस संसार में कौन व्यक्ति है जो ऐसा काम करे जिससे गाय महाराज की तुलना की जा सकती? मतलब कोई ऐसा नहीं कर सकता। गाय महाराज के विषय में कह रहे हैं यज्वा, वे बहुत यज्ञ करते थे, अभिमानी, उनको सब तरह से चारों तरफ से सम्मान प्राप्त होता था। एक अर्थ है अभिमानी का यह कि अभिमानी, जिसको सब जगह से मान प्राप्त हो। दूसरा अर्थ यह भी है कि वे अभिमानी थे, उनको गर्व था, और बहुविद, बहुविद का अर्थ है कि बहुत बहुत शास्त्रों के विचार का उनको ज्ञान था। धर्म गुप्ता, धर्म की रक्षा करने वाले थे। समागतः श्री, उनका ऐसा चरित्र था, ऐसा व्यवहार था कि स्वाभाविक ही अपने से ही सब प्रकार की संपदा उनके पास पहुंच जाती थी। उनको कोई कामना नहीं थी। यज्ञ कर रहे थे, लेकिन एक भगवान को संतुष्ट करने के अतिरिक्त उनके और कोई कामना नहीं थी। लेकिन फिर भी समागतः श्री, सब प्रकार का ऐश्वर्य, सब प्रकार की संपदा स्वतः ही उनके पास आ जाती थी। सदसस्पति शताम सत सेवको, क्योंकि उनकी विशेषता थी कि वे शताम सेवक सदसस्पति। यद्यपि वे कई एक लोगों का, कई एक कमिटी का स्वामी थे, लेकिन फिर भी शताम सत्सेवक, जो भक्त हैं उनके सेवक थे। तो अन्यो भगवत कलामृत, ऐसे गाय महाराज की समता कौन दूसरा कर सकता है? वे भगवान के अंश हैं और उनके अतिरिक्त ऐसा कार्य कोई नहीं कर सकता। कह रहे हैं कि यम व्यसिंचत पर्या मुदा सती सत्या शिशो दक्ष कन्या शरद भी जस्या प्रजानम दुधे धरा शिशो निरा शिशो गुणवत गुणवत सस्नुदोधा दक्ष कन्या। या कह रहे हैं कि सत्या शिशो दक्ष कन्या शरद भी शरद भी दक्ष कन्या। अब नाम पढ़ेंगे श्रद्धा तितिक्षा यही सब है दक्ष के कन्याओं के पुत्रियों का नाम है। तो कह रहे हैं कि श्रद्धा इनकी इतनी प्रवृद्ध थी इन सब गुणों के कारण स्वतः ही सारी कामनाओं की पूर्ति हो जाती थी और अपने से ही राजा लोग उनको भेंट अर्पित करते थे। और प्रत्यंचता युद्ध धर्मेण विप्रा यदा शिशम षष्ट मनसम परित्य कोई राजा पराक्रमी होता है तो उसके बाण के प्रभाव से दूसरे राजा लोग अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और आकर के उसको भेंट अर्पित करते हैं। तो महाराज गए का ऐसा चरित्र था ऐसा पराक्रम था ऐसा प्रभाव था कि इस संसार में भी राजा लोग उनको भेंट अर्पित करते थे और ब्राह्मण लोग भी उनको भेंट अर्पित करते थे परलोक में। कहने का आशय यह है कि उनका ऐसा पराक्रम था कि इस संसार में भी उनको लोग भेंट अर्पित करते थे और उनका ऐसा चरित्र था ऐसे प्रजा का पालन कर रहे थे कि उसके प्रभाव से उनका परलोक भी सुधर रहा था। यह सिद्धांत है कि कोई व्यक्ति अपने प्रजा का पालन करता है खास करके उसको धर्म के संपादन में सहयोग करता है यज्ञ में सहयोग करता है तो यज्ञ करने वाले व्यक्ति का धर्म का आचरण करने वाले व्यक्ति के पुण्य का छठा हिस्सा समर्थन करने वाले को भी प्राप्त हो जाता था। गाय महाराज अपने प्रजा के इस ढंग से पालन पोषण कर रहे थे उनको भक्ति करने के लिए ऐसा सुविधा दे रहे थे कि स्वतः ही टैक्स के रूप में ब्राह्मण लोग भी उनके पुण्य का एक हिस्सा इनको प्रदान कर रहे थे। तो इसी को साहित्यिक भाषा में कह रहे हैं कि उनको इस लोक में राजा लोग भी भेंट दे रहे थे और परलोक में ब्राह्मण लोग भी भेंट दे रहे थे। और गाय महाराज के चरित्र का कई एक श्लोकों में वर्णन किया गया है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यज्वाभिमानी यज्ञ के क्षेत्र में बहुत बढ़े चढ़े थे। और कल आप लोग सुने होंगे कि वे ऐसा यज्ञ किए कि उरुसोम पी थे। यज्ञ कई एक प्रकार का है और जिस यज्ञ में सोम रस पान किया जाता है तो उसको बहुत महत्वपूर्ण यज्ञ माना जाता है। सब यज्ञ में सोम पान नहीं किया जाता है। सोम एक लता है लता का जूस वितरण करते हैं उसी को सोम पान कर कहते हैं। और भृत्य स्नान के में जिस दिन यज्ञ का समापन होता है और उसको एक स्नान का विधान है उसको औभृत्य स्नान कहते हैं। तो औभृत्य स्नान करने के बाद सोम रस पान करते हैं। तो गाय महाराज के विषय में कह रहे हैं कि मघो निमाद्यत उरसोम पीते। अब उस यज्ञ में इतना सोम रस का वितरण किया गया कि इंद्र तो सोम रस पान करके मतवाला हो गए खूब छक करके पिए प्रत्यक्ष वहां उपस्थित हो करके। और श्रद्धा विशुद्धा चल भक्ति जोग समर्पित ज्या फलमा जहार। और एक घटना का उल्लेख कर रहे हैं कि श्रद्धा विशुद्धा चल भक्ति जोग समर्पिता उनके भक्ति के विषय में कह रहे हैं कि श्रद्धा के चलते श्रद्धा से पूर्ण होने से भक्ति बिल्कुल शुद्ध है और अचल है। शुद्ध भक्ति और दृढ़ भक्ति के द्वारा समर्पित तेज्या फलमाजहार, और ऐसे भक्ति से जब यज्ञ में वे भगवान को भेंट अर्पित कर रहे थे तो फलमाजहार भगवान स्वयं उपस्थित होकर के बहुत आदर के साथ उस भेंट को स्वीकार कर रहे थे। बहुत ही बड़ी बात कही जा रही है कि यज्ञ में स्वयं भगवान उपस्थित प्रकट उपस्थित हो करके और उनके भेंट को उनके यज्ञ में अर्पित अरहण को पूजा सामग्री को एकदम स्वयं उसको स्वीकार कर रहे थे बहुत आदर के साथ। बहुत बड़ी बात है। वास्तव में एक चीज है, ध्यान रखना चाहिए कि भगवान को हम कोई भी वस्तु भेंट करते हैं, उनको अर्पित करते हैं, तो भगवान उससे संतुष्ट होते हैं। ऐसा शास्त्रों में लिखा गया, विष्णु पुराण में लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति वर्ण आश्रम का पालन करता है और अपने कर्म को भगवान को अर्पित करता है तो भगवान इससे संतुष्ट होते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान देना चाहिए कि नानोपचार कृत पूजन मार्त बंधो प्रेमणैव भक्त हृदयम सुख विद्रुतम स्याद जावत क्षुदस्ति जठरे जरठा पिपासा तावत सुखाय भवत ननु भक्ष पेय। भगवान कह रहे किसी भक्त से कि हे भक्त, नानोपचार कृत पूजन है, बहुत बहुत प्रकार के सामग्री को जुटाया गया है। नानोपचार उपचार कहते हैं सामग्री को, जैसे आप लोग षोडशोपचार पूजा करते हैं। षोडशोपचार पूजा का यही अर्थ है कि 16 प्रकार से 16 सामग्री से पूजा करते हैं। तो नानोपचित नानोपचार कृत पूजन मार्त बंध हो, कब नाना प्रकार के सामग्री जुटाए और उससे भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान को अर्पित कर रहे हैं। प्रेमणैव भक्त हृदय सुख विद्रुतम स्यात्, यानी कि ए भक्त, जो उसमें प्रेम अंश है उसी से हमारा हृदय पिघलता है। वस्तु से भगवान का हृदय नहीं पिघलता है, प्रेमणैव जो प्रेम है उससे भगवान का हृदय पिघलता है। उदाहरण दे रहे हैं कि जावत क्षुदस्ति जठरे जरठा पिपासा तावत सुखाय भवत ननु भक्ष पेय। जब तक पेट में प्रबल भूख प्यास है तो उसी समय खाने पीने का चीज अच्छा लगता है। यदि प्यास नहीं है तो पानी में बहुत स्वाद नहीं है, और भूख नहीं है तो कितना हो अच्छा अच्छा भोजन दीजिए और बहुत अच्छा नहीं लगता है। लेकिन भूख है प्यास है और उस समय खाने पीने का पदार्थ दिया जाए कितना अच्छा लगेगा। तो उसी प्रकार जब भगवान को श्रद्धा के साथ भक्ति के साथ प्रेम के साथ कुछ अर्पित करते हैं तो उससे भगवान का हृदय पिघल जाता है। उस श्रद्धा का बहुत महत्व है। वास्तव में भक्ति के क्षेत्र में श्रद्धा ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु है। भक्ति में कोई विकास करता है तो उसके पीछे श्रद्धा की बहुत बड़ी भूमिका है। श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं, द प्रोग्रेस इन कृष्ण कॉन्शसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ फॉलोवर्स। तो ये जो एटीट्यूड शब्द का प्रयोग किए हैं ये श्रद्धा का ही एक रूप है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि भक्तों का जो वर्गीकरण करते हैं तो श्रद्धा अनुसारी, श्रद्धा के आधार पर ही भक्ति के भक्ति का माप स्थापित करते हैं। श्रद्धा का बहुत महत्व है और श्रद्धा का अर्थ समझना चाहिए। श्रद्धा का न्यूनतम स्तर है भक्ति प्रतिपादक शास्त्र में विश्वास, जो भक्ति का प्रतिपादन करने वाले शास्त्र हैं इनके वचन में विश्वास करना, इसको श्रद्धा कहते हैं। और जब वही श्रद्धा प्रौढ़ हो जाते, दृढ़ हो जाते, तो उसका रूप दूसरा है। श्रद्धा के विषय में एक चीज और समझना चाहिए कि किसी किसी व्यक्ति में श्रद्धा स्वतः होती है, स्वतः भक्ति के प्रति झुकाव है पूर्व संस्कार से, और श्रद्धा को आपादित भी किया जा सकता है। उपदेश के द्वारा भी किसी के हृदय में श्रद्धा का संचार किया जाता है, और यदि श्रद्धा प्रौढ़ हो जाता है, ऊढ़ हो जाता है, जम जाता है हृदय में, तो उसका लक्षण है कि व्यक्ति फल पर ध्यान नहीं देता, सिद्धि असिद्धि पर विचार नहीं करता, अपने साधन में लगा रहता है। उदाहरण दिया गया है कि जैसे कोई स्वर्ण लिप्सु है तो सोना मिले या न मिले खोजता रहता है। कोई कोई नदी है जैसे स्वर्ण रेखा नदी, तो उसमें कभी कभी सोने का टुकड़ा मिल जाता है, और कुछ लोग सोना खोजते रहते हैं, तो कभी सोना मिलता है, किसी दिन नहीं भी मिलता है, लेकिन अब नहीं मिला तो बंद नहीं कर देते हैं, वे खोजते रहते हैं। तो उसी तरह प्रौढ़ श्रद्धा का लक्षण दिखाया गया है कि सिद्धि मिले या न मिले साधक साधना में लगे रहता है। तो श्रद्धा का बहुत महत्व है। कह रहे हैं गए महाराज के विषय में कि श्रद्धा विशुद्धा चल भक्ति योग समर्पिते ज्या फलमा अजहार। श्रद्धा के चलते उनकी भक्ति बिल्कुल शुद्ध थी और दृढ़ भक्ति अखंड भक्ति है। ऐसे भक्ति से जब इच्छा यज्ञ सामग्री को, पूजा सामग्री को यज्ञ में अर्पित कर रहे थे, तो फलमा अजहार अजहार उसको भगवान प्रकट होकर के स्वीकार किए, साक्षात रूप से उपस्थित हो करके उसको स्वीकार किए। और भगवान ने श्रद्धा के अनुसार व्यवहार करते हैं। यदि बहुत प्रबल श्रद्धा है तो भगवान प्रकट हो करके भी किसी वस्तु को स्वीकार करते हैं। इस विषय में हमें एक घटना का स्मरण हो रहा है, यद्यपि इस घटना को मैं ग्रंथ में नहीं पढ़ा हूँ, भक्तों के मुख से सुना हूँ। एक घटना है कि एक शहर में एक वेश्या थी, वह देह अपने देह व्यापार से अर्जन कर रही थी। अब उसका संयोग था, उसका खूब बिजनेस चला, उसको बहुत पैसा आने लगा। अब बहुत पैसा आया तो एक नया घर बनाना प्रारंभ की, खूब अच्छे जगह पर नया घर बना ली, वहीं थोड़ा बगीचा भी था। वो अभी उसमें रह नहीं रही थी, और संजोग की बात है कि साधुओं का एक ग्रुप उस नगर में गया, ग्रुप था, वे लोग कहीं रुकना चाहते थे, नगरवासियों से स्थान का चयन कर रहे थे, पूछ रहे थे, तो नगर निवासी बतला दे कि अरे वहाँ नया घर है, जाइए वहीं रहिए ना। वो वेश्या का घर था, साधु लोग गए उसमें, अपना डेरा जमा दिए, आसन लगा दिए, खूब अच्छा जगह था। अब तो वेश्या को पता चला कि हमारे घर में साधु आए हैं, संतों की टोली आई है, तो बहुत प्रसन्न हुई। अब वो तो इतना प्रसन्न थे कि अब क्या कहा जाए, जीवन भर तो अपने कर्म के चलते वे ग्लानि में मरती रही, लेकिन उसको पता चला कि हमारे घर पर संत आए हैं, तो बहुत प्रसन्न हुई। वहाँ गई और संतों को कुछ सेवा करना चाहिए, भोजन कराना चाहिए, लेकिन अब संतों को किसी तरह पता चल गया कि वेश्या का घर है। अब वे बहुत भारी द्वंद्व में पड़े, श्रद्धा उसकी बहुत थी, लेकिन संत लोग कहे कि देखो हम लोग यहाँ भोजन स्वीकार नहीं कर सकते, या हम लोग भोजन नहीं करेंगे, लेकिन उसके श्रद्धा को देख करके वे लोग कहे है कि देखो तुम भगवान की सेवा करो, भगवान तुम्हारे सेवा को स्वीकार कर लेंगे। भक्त लोग भोजन में बहुत ध्यान रखते हैं और भोजन उसके स्वीकार नहीं किए संत लोग, लेकिन उस उपदेश दिए कि तुम भगवान की सेवा करो। और किसी मंदिर में गई, भगवान को नमस्कार की, भगवान के श्रृंगार को देख करके उसके मन में यह विचार आया कि मैं भी भगवान के लिए कोई आभूषण अर्पित करूंगी। वो भगवान के लिए वो खूब सुंदर एक आभूषण बनवाई सोने का। वो वेश्या है, अपने उसी अर्जन से वे भगवान के लिए आभूषण बनवाई और उसको तो बहुत संकोच हो रहा था, लेकिन संत लोग कहे थे कि तुम भगवान की सेवा करो, तो उस आभूषण को लेकर के वो मंदिर में जा रही थी। और मंदिर में प्रवेश की, जब ही डीटी के नज़दीक गई तब तक उसको रजोधर्म प्रारंभ हो गया। अब तो उसके सामने उसके नीचे से धरती खिसक गई, अपनी स्थिति देख करके तुरंत वहाँ से वापस होना चाहिए, लेकिन ठाकुर जी अपना हाथ बढ़ा करके और उसका आभूषण स्वीकार कर लिए। यह श्रद्धा का महत्व है। लेकिन मैं एक चीज है आपको बतला दूं कि ये प्रश्न मत कीजिएगा कि तब हम लोग अशुद्ध अवस्था में भगवान को भोग लगा सकती हैं। जिसको श्रद्धा है वो नियम का पालन करेगा, अशुद्ध अवस्था में डीटी में नहीं प्रवेश करेगा। और एक चीज है ध्यान रखना चाहिए कि भोजन का अलग हिसाब किताब है और सोने चांदी का अलग हिसाब किताब, शुद्धि अशुद्धि का अलग हिसाब होता है। गाय के गोबर से जगह पोत दीजिए पवित्र हो जाएगा, उसी तरह ये सोना चांदी अपवित्र नहीं होता है। ऐसा गुरुजनों से मैं सुना हूँ कि कोई सोने का बर्तन है, चांदी का बर्तन है, कोई भोजन किया है, बस पानी से धो दीजिए और शुद्ध हो गया। लेकिन मिट्टी का बर्तन है तो एक बार भोजन कर लिया तो अब वो शुद्ध नहीं होगा, उसको पानी पी करके कुल्हड़ को फेंक देते हैं, चाय पी करके फेंक देते हैं। कोई कोई व्यक्ति मिट्टी के बर्तन में भोजन करते हैं तो एक ही व्यक्ति भोजन कर रहा है तो वह कई एक दिन भोजन कर सकता है, धो करके रख लेता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति भोजन नहीं कर सकता। एक बार जूठा हुआ तो अब वह पवित्र नहीं हो सकता। दूसरे धातु के बर्तन हैं, कांसा इत्यादि हैं, तो कोई भोजन किया या कुत्ता भी उसको चाट लिए तो राख से उसको रगड़ करके धो दीजिए, वो पवित्र हो गया। लेकिन प्लास्टिक वो कभी शुद्ध होता ही नहीं है, वो सदा अशुद्ध है। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि इसको धो देने से शुद्ध हो जाएगा। तो हम यह कह रहे हैं कि उस वेश्या की श्रद्धा को देख करके भगवान अपना हाथ बढ़ा करके उसके आभूषण को स्वीकार कर लिए। यहाँ गए महाराज के विषय में कह रहे हैं कि श्रद्धा विशुद्धा चल भक्ति जोग समर्पिता इज्जा फलम माजहार। उनकी भक्ति इतनी शुद्ध थी और अटल भक्ति थी कि यज्ञ में जो सामग्री अर्पित कर रहे थे तो भगवान प्रकट होकर के उसको स्वीकार किए। अब आगे कह रहे हैं कि यत प्रीणनात बरहिष देव तिर्यं मनुष्य वीरु तृणमा विरिंचा प्रियेत सद्य सह विश्व जीव प्रीत स्वयं प्रीति मगात गयस्य। अरे कि जिनके प्रसन्न होने से यज्ञ में जिनकी पूजा की जाती है और यदि वे प्रसन्न हो गए तो कह रहे हैं कि सब प्रसन्न हो जाते हैं, देवता पशु मनुष्य लता घास और ब्रह्मा जी तक। भगवान यज्ञ में संतुष्ट हो गए तो ब्रह्मा से लेकर के एक तृण पर्यंत सब संतुष्ट हो जाते हैं। चेत सत्य, देर नहीं लगती है, भगवान प्रसन्न हुए सब प्रसन्न हो गए। और सह ह विश्व जीव, अब एक बात कह रहे हैं, सह वे भगवान, ह मतलब ये भक्ति की महिमा देखिए कितना स्पष्ट है, विश्व जीव जो सारे जीवों को चेतना प्रदान करने वाले, जीवन प्रदान करने वाले, प्रीतः स्वयं, तो वे भगवान तो सदैव प्रसन्न रहते हैं। भगवान कभी विषाद में नहीं पड़ते हैं, वे कभी चिंता में नहीं पड़ते, उनको डिप्रेशन नहीं है, प्रीतः वे स्वयं सदा प्रसन्न रहते हैं। लेकिन प्रीतिम अगाध गयस्य अध्वर्य, लेकिन वे भगवान भी राजर्षि गय के यज्ञ में प्रसन्नता को प्राप्त किए, वे पहले से ही प्रसन्न हैं, तो प्रसन्नता को प्राप्त किए इसका क्या आशय है? इसका आशय यह है कि यज्ञ में उपस्थित होकर के प्रकट रूप से कहे कि मैं तुम्हारे यज्ञ से बहुत प्रसन्न हूँ। प्रीतिम अगाध का अर्थ है कि वे शब्द से अपनी प्रसन्नता को प्रकट किए कि मैं तुम्हारे यज्ञ से अतिशय संतुष्ट हूँ, बिल्कुल प्रसन्न हूँ, संतुष्ट हूँ। तो ऐसे गए महाराज के यज्ञ में वे उपस्थित हुए। इसमें एक शब्द है प्रियत सद्य सह, देख रहे हैं ना, सह अलग अलग है, उसको एक साथ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सह विश्वजीव है। सह का अर्थ होता है साथ में, सह विश्व जीव है, मतलब विश्व के जितने जीव हैं, ब्रह्मा से लेकर के घास तक, तो कह रहे हैं कि प्रीत स्वयं प्रीति मगात गयस्य, वो सारे जीवों के साथ संतुष्ट हो करके और यज्ञ में आकर के कहे भगवान कि मैं तुम्हारे यज्ञ से, तुम्हारे पूजा से पूर्णतः संतुष्ट हूं। सह विश्व जीव, सारे विश्व के, सारे विश्व के जीवों के साथ। तो यहाँ सिद्धांत दे रहे हैं कि भगवान के संतुष्ट होने से सारा संसार संतुष्ट हो जाता है। यह भगवान को जो कर्म अर्पित करते हैं उसकी विशेषता है। भगवान को संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं, अपने कर्म को अर्पित करते हैं, तो भगवान संतुष्ट होते हैं, और भगवान संतुष्ट हुए तो सारा विश्व संतुष्ट हो जाता है। और यदि भगवान को अर्पित नहीं कर रहे हैं, अपने भोग के लिए कर्म कर रहे हैं, तो उसकी क्या स्थिति है, अवसर पा करके इस बात को भी समझ लेना चाहिए। इसे श्रीमद् भागवतम में 8वें स्कंध के 5वें अध्याय के लास्ट में, शायद 5वें 6वें जो हो, ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान का दर्शन करना चाह रहे हैं। सारे देवता लोग हैं लेकिन ब्रह्मा जी प्रधान हैं, जो भगवान की स्तुति कर रहे हैं, उनका दर्शन करना चाहते हैं। कोई कहे या भगवान ही कहे, अरे भगवान मेरा दर्शन कितना कठिन है, ये तुम लोग 2-4 श्लोक बोल करके हमारा दर्शन चाहते हो, ये थोड़ी सी स्तुति करके इतना भारी मनोरथ कर रहे हो, ऐसे कैसे साहस कर रहे हो। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि क्लेश भूरी अल्प साराणी कर्माणी विफला निवा देही नाम विषयार्ता नाम न तथई वार्पितम प्रभो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नाथ, क्लेश भूरी अल्प साराणी, ये संसार का जो कार्य है, देही नाम विषयार्ता नाम, जो विषय से आर्त है, अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए कार्य में लगे हुए हैं, तो उनकी स्थिति है कि क्लेश भूरी अल्प साराणी, क्लेश भूरी, भूरी का अर्थ है बहुत अधिक, परिश्रम तो बहुत अधिक है और फल बहुत थोड़ा। लोग कहते हैं कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया, तो उसी तरह विषयार्ता नाम जो अपने भोग के लिए काम में लगे हुए हैं, तो ऐसे कर्म के स्वरूप को बतला रहे हैं कि क्लेश भूरी अल्प सारणी, इसमें परिश्रम बहुत अधिक है और फल बहुत थोड़ा है। कर्माणि विफलानि वा, और कभी कभी तो पूरा पूरा निष्फल चला जाता है। परिश्रम कर रहे हैं फल कुछ नहीं प्राप्त होता है। आप लोग आश्चर्य मत कीजिए, कई एक सारे स्टूडेंट हैं, कई एक साल तक परिश्रम करते रहते हैं लेकिन कंपटीशन नहीं क्वालिफाई किए, उस पढ़ाई का कुछ मतलब ही नहीं निकलता है। इससे भी प्रकट उदाहरण देख सकते हैं कोई कोई कृषक हैं, कितना परिश्रम करके खेती करते हैं। हम लोग इधर रहते हैं, बहुत लोगों को एसी की जरूरत पड़ती है, एसी लगाना चाहते हैं, घर के अंदर है, डायरेक्ट धूप में नहीं है। कृषक लोग एकदम उस धूप में परिश्रम करते हैं। हम लोगों को तो प्रकट अनुभव है, कभी कभी वे लोग कपड़ा नहीं पहनते हैं, कपड़ा खोल दें तो इतना सीधे धूप आता है कि सीधे उनके पीठ पर फोड़ा पड़ जाता है। एकदम प्रकट अनुभव है, हम लोगों को भी अनुभव है। परिश्रम करते हैं, दो तीन महीना तक विविध प्रकार का परिश्रम किए, फल एकदम आ गया है, तब तक ओला पड़ गया या कोई घटना हो गई, पूरा समाप्त हो गया। उदाहरण दिया गया कृषिवत च निष्फलम, इस संसार का कर्म कभी कभी कृषि के समान निष्फल चला जाता है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि क्लेश भूरी अल्प सारणी कर्माणि विफलानि वा, दो स्थिति होते, फल थोड़ा मिलता है या पूरा पूरा निष्फल चला जाता है। और एक दृष्टि से विचार किया जाए तो जितना भी संसार का कार्य कर रहे हैं सब विफल ही जा रहा है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये संसार बनाया गया है मुक्ति के लिए, व्यापक दृष्टि डालेंगे तो जीवों के मुक्ति के लिए सृष्टि की गई है, और इस सृष्टि में कोई कार्य कर रहे हैं और उससे मुक्ति नहीं प्राप्त हुई या मुक्ति के तरफ नहीं बढ़े तो विफल ही हुआ ना। तो एक दृष्टि से सारा कार्य ही विफल है। वा विकल्प के अर्थ में नहीं है, एवकार के अर्थ में है। तो देहिनम विषयार्ता नाम, यह स्थिति उस व्यक्ति की है जो विषय से आर्त है, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहा है। न तथा वार्पितम त्वयि, लेकिन जो कर्म आपको अर्पित किया गया है उसके साथ ऐसा नहीं होता है। नावमह कर्म कल्पो पे विफलाय ईश्वर अर्पित, थोड़ा भी कोई काम किया या कर्म का आभास भी किया यदि भगवान को अर्पित है तो ये कभी विफल नहीं हो सकता। कल्पते पुरुषस्य यात्मा दैतो हित, चूंकि कर्म का फल भगवान के हाथ में है तो जो कर्म भगवान को अर्पित किया जाता है तो कभी निष्फल नहीं जाता, उसका फल प्राप्त होता ही है। और उस कर्म की एक विशेषता और दे रहे हैं कि कह रहे हैं कि यथा ही स्कंद शाखा नाम तरोर मूलावसेचनम, जैसे वृक्ष के जड़ में पानी डालिए तो उसे स्कंद है और शाखा उपशाखा सबकी तृप्ति होती है, एवं आराधनम विष्णु सर्वेशम आत्मनस चाहिए। इसी प्रकार कोई भगवान की आराधना करता है तो सर्वेशम वो सब के लिए है, और आत्मनस च वो भगवान के लिए भी है अपने लिए भी है। तो इस संसार में जो लोग कर्म में लगे हुए इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो सारा कर्ज विफल जा रहा है, कोई फल नहीं प्राप्त हो रहा है। लेकिन यदि भगवान को अर्पित करते हैं तो उस फल का लाभ होता है कि भगवान भी संतुष्ट होते हैं और सारा संसार भी संतुष्ट हो जाता है। वास्तव में वही कर्म अपने लाभ के लिए होता है। समय नहीं है, मैं व्याख्या नहीं कर सकता, लेकिन प्रहलाद महाराज उदाहरण दे रहे हैं कि यथा मुखश्री, जैसे कोई दर्पण के समक्ष है और अपने प्रतिबिंब फलित प्रतिबिंब का सौंदर्य बढ़ाना चाहता है तो लाख कोशिश करे वो अपने प्रतिबिंब का सौंदर्य नहीं बढ़ा सकता। शीशा में कोई देख रहा है, अपना ही मुख देख रहा है, वो सोच रहा है कि थोड़ा तिलक लगा दूं, तो शीशा को गंदा कर सकता है, प्रतिबिंब पर तिलक नहीं लगा सकता। लेकिन अपने बिंब पर, अपने मुख पर तिलक लगाएगा तो स्वतः ही प्रतिबिंब को पहुंच जाएगा। उदाहरण समझ रहे हैं ना? तो उसी प्रकार अपने लिए हम कार्य कर रहे हैं तो उससे हमको लाभ नहीं होता, लेकिन भगवान के लिए कार्य करते हैं तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं, सारा दुनिया भी प्रसन्न होता है, उसी से अपना कल्याण होता है। तो महाराज गाय के विषय में कह रहे हैं कि जिसके संतुष्ट होने से सारा संसार संतुष्ट हो जाता है, वो भगवान यज्ञ में प्रकट हो करके स्पष्ट रूप से ज्ञापन दिए, शब्दों से बोले कि तुम्हारे यज्ञ से मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। यह महाराज गाय का चरित्र है। आगे भी उनके वंश का वर्णन है, उसको हम लोग आगे सुनते रहेंगे। हरे कृष्ण।